प्रभावत के महामहोत्सव की कुंज बिहारी परिव्राजकार्योतर श्री श्रीमदिवाइन ग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय गौर प्रेमानंदी गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग श्लोक संख्या 43 सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मन वाक दृष्टि वृत्ति आत्मनि आत्मानं आवेश्य सह अंतः स्वासः उपारम सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृष्टि भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्तः स्वास उपारम सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश सोन्तः स्वास उपारम सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मा उवाच सूत गोस्वामी ने कहा कृष्ण भगवान कृष्ण में एवं एकमात्र भगवती भगवान में मनः मन से वाक वाणी से दृष्टि दृष्टि से वृत्ति भी कार्यों से आत्मनि परमात्मा में आत्मानं जीव को आवेश लीन करके सह वह अंतः श्वास श्वास खींचकर उपारमत शांत हो गए। अनुवाद मेरे पीछे बोली सूद गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भीष्म देव ने मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए, उनकी श्वास रुक गई। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि वे भगवान का चिंतन करते हुए और अपने मन में उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करते हुए भगवान में लीन हुए। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भीष्मदेव की ये जो समाधि है ये विशेष है, निर्विकल्प समाधि है। कुछ लोग हैं ब्रह्म लीन होते हैं, वो निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, लेकिन भीष्मदेव की जो समाधि है वो इस प्रकार की नहीं है। जब मायावादी देह त्यागते हैं तो उनको कहा जाता है ब्रह्मलीन, है ना, ब्रह्मलीन 108 श्री जयदयाल गोयन का, इस तरह से मतलब मायावादियों का नाम लिया जाता है। लेकिन जो भक्त हैं वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है, हाँ, नित्य लीला प्रविष्ट, ब्रह्मलीन नहीं, नित्य लीला प्रविष्ट, क्योंकि ब्रह्म से जो है ना आगे परमात्मा है, वो परमात्मा से आगे भगवान है, तो भगवान का जो साक्षात्कार है ये सर्वोच्च अवस्था है, और भगवान के साक्षात्कार में भी जो सबसे बड़ी अवस्था है भगवान की लीला का चिंतन करना, भगवान का नाम, फिर उससे आगे रूप, उससे आगे गुण, उसके आगे लीला। तो भगवान की लीला में सब शामिल है, भगवान के गुण भी आ जाते हैं और भगवान का रूप भी आ जाता है और भगवान का नाम भी आ जाता है। तो भीष्मदेव भगवान की लीला का चिंतन कर रहे थे। तो पिछले श्लोकों में हमने सुना कि कई प्रकार की लीलाओं का चिंतन किया भीष्मदेव ने, अर्जुन के साथ कैसी भगवान ने लीलाएं करी उनके साथ, और फिर गोपियों के साथ भी कैसी लीलाएं करी भगवान ने, तो उनका चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी श्वास रोकी या श्वास छोड़ी। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो अवस्था है ये निर्विकल्प समाधि है। आगे उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान को देखते रहे। तो इसमें शब्द है मनोवाग दृष्टि, मनोवाग दृष्टि आवेश है, उन्होंने अपने को आवेशित किया भगवान में, अपने को आवेशित किया मन से वाणी से और दृष्टि से। तो मन से आवेशित किया तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि स्मरण किया भगवान की लीलाओं का, तो यह है मन से आवेशित किया, और वाक वाणी से तो प्रभुपाद लिखते हैं उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया। तो प्रभुपाद जी श्लोक के शब्दों को समझा रहे हैं एक एक करके क्रम से, और फिर दृष्टि, दृष्टि तो प्रभुपाद लिखते हैं, और अपनी दृष्टि से, और अपनी दृष्टि से अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान को देखते रहे, है ना। मनोभाव, दृष्टि, तीन चीजें हैं। यह शरीर नहीं कहा गया, ये शरीर से तो सेवा नहीं कर सकते। वैसे तो मन, वाणी और शरीर कहा जाता है ना, मतलब जो कर्म है वो मन से, वाणी से और शरीर से होते हैं, लेकिन यहां शरीर से कोई कर्म नहीं हो रहा है, शरीर से कोई कर्म नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए मन, वाणी और दृष्टि, दृष्टि उनकी काम कर रही है, मन उनका काम कर रहा है और वाणी काम कर रही है, शरीर काम नहीं कर रहा। शरीर में हजारों हजारों बाण आर पार हैं, तो शरीर हिल भी नहीं सकता है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी मन पूरी तरह से सचेत है और वाणी भी पूरी तरह से सक्रिय है और दृष्टि भी सक्रिय है, दृष्टि में कोई कमी नहीं, अच्छी प्रकार से देख रहे हैं, उनको चश्मा नहीं लगता है भीष्म देव को, है ना। तो दृष्टि से क्या कर रहे हैं, अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान को देखते रहे, इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। वृत्ति का मतलब कार्यकलाप, मन की वृत्ति और वाणी की वृत्ति और दृष्टि की वृत्तियों को, है ना, उन्होंने भगवान में लगाया, एकाग्र किया, आवेश, आवेशित किया, अपने को आवेशित किया भगवान में, है ना, भगवान में आवेशित किया। जैसे करंट होती ना, करंट, है ना, तो करंट किसी चीज में आ जाती है तो वो आवेशित कहलाती है, है ना। तो अपने को उन्होंने आवेशित किया भगवान में, तीन चीजों से आवेशित किया, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। सिद्धि की ये सर्वोच्च अवस्था है और भक्ति का अभ्यास करके कोई भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब ये नहीं है कि हम सोचें भाई भीष्म जी तो महाजन है, तो भाई उन्होंने जो किया वो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। प्रभु जी क्या लिखते हैं, कोई व्यक्ति कर सकता है। वास्तव में भीष्म जी को ये करने की भी आवश्यकता नहीं थी, वो तो शरीर के सहित भी भगवान के धाम में जा सकते थे, लेकिन फिर भी वो शरीर छोड़ रहे हैं और ये सब जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसे करो। उनको तो शरीर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, शरीर के साथ ही वो जा सकते हैं भगवान के धाम, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ऐसा कर सकें, है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, कोई भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति में नौ सेवा सिद्धांत होते हैं, नौ सेवा सिद्धांत होते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत में, भगवान की भक्ति के नौ सेवा सिद्धांत, श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो पहला है श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवनम, चरण कमल की सेवा, चौथा और पांचवा अर्चनम, पूजा, और छठवां वंदनम, स्तुति, और सातवां दास्यम, आज्ञा पालन, और आठवां सख्यम, सखा भाव, और नवा आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं। नौ प्रकार की भक्तियों में से किसी एक में ही अगर कोई व्यक्ति लगा रहे, या नौ के नौ में लगा रहे, है ना, उससे क्या होगा, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन लगना है 24 घंटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक में लगें या दो में लगें या नौ के नौ में लगें, लेकिन लगे किस तरह से, 24 घंटे। तो वांछित फल की प्राप्ति होती है, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में इनका निरंतर अभ्यास करना होता है। गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइड, उसको कहते हैं गुरु, जो गाइड करे आपको। 24 घंटे आप कैसे इसमें लग सकते हो भगवान की सेवा में, इसके लिए आपको गाइड चाहिए, गाइडेंस, पथ प्रदर्शन चाहिए और आपको अभ्यास करना है। इनमें से श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, श्रवण, श्रवण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कलयुग में तो कहा गया है कीर्तना देव कृष्ण से, कीर्तन से ही, कृष्ण के कीर्तन से ही मुक्त संग्रह प्रभुपाद। तो फिर कीर्तन ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद तो लिखते हैं श्रवण ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ? जब कीर्तन करेंगे तो श्रवण भी करेंगे। जब श्रवण करेंगे तभी कीर्तन। धन्यवाद। जब तक आप श्रवण नहीं करते हैं तब तक आप कीर्तन नहीं कर सकते हैं। जब तक आप श्रवण नहीं करते हैं तब तक आप कीर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। और श्रवण भगवान के नाम का, रूप का, गुणों का, लीलाओं का श्रवण, श्रवण। और श्रवण में गीता में भगवान क्या कहते हैं कि आप प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो, श्रवण की विधि है। खाली श्रवण नहीं, प्रश्न भी होने चाहिए, प्रश्न भी करने चाहिए। आपके मन में कुछ शंका है, संदेह है, वो भी पूछना चाहिए, नहीं तो वो श्रवण पर्याप्त नहीं है, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी कक्षाओं में हमेशा विधि बताई प्रश्न की। प्रश्न को हमेशा प्रोत्साहन दिया जाता है, क्लास में समय दिया जाता है कि प्रश्न करो आप, ठीक है ना। तो श्रवण में प्रश्न करना जरूरी है, प्रणाम करना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है और प्रश्न करना जरूरी है। तो श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है उसे भगवद गीता का और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। श्रवण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, नियमित रूप से श्रवण करना गीता और भागवत का। इसलिए प्रभुपाद ने नियम बनाया। अब हम पालन नहीं करते हैं नियमों का, वो दूसरी बात है, लेकिन श्रवण का नियम बनाया कि श्रवण करना जरूरी है। और श्रवण नहीं करते हैं इसलिए फिर भक्त माया में गिरते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, है ना, या इस कोण को छोड़ के गौड़ी मठ में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, है ना। क्योंकि प्रभुपाद ने बनाया नियम श्रवण का। और क्या श्रवण करना है, भगवत गीता और भागवतम। शाम को भगवत गीता का भी जो है ना उतना ही महत्व है श्रवण करना जितना भागवत का, है ना। ये प्रभुपाद तो बता रहे हैं, अब हम लोग ना समझे तो दूसरी बात है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्म देव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान उपस्थित ना हो सके। तो प्रभुपाद जो है एक चीज बता रहे हैं कि आपको परिणाम वही प्राप्त हो जाएगा जो भीष्म जी को प्राप्त हुआ, लेकिन अंतर ये जरूर हो सकता है कि साक्षात भगवान ना आए। इसका एक कारण तो यह है कि भगवान का अवतार काल तो नहीं है ये। जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार काल था तो हरिदास ठाकुर के सामने चैतन्य महाप्रभु आए, है ना। तो ये हो सकता है कि भगवान हमें ऐसे भीष्म देव के समान दर्शन ना दें, लेकिन तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, आप वो फल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, श्रवण के द्वारा। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में उनके शब्द भगवान से अभिन्न है, मतलब आपको भगवान की प्रत्यक्ष संगति का लाभ मिल सकता है। कैसे, श्रवण से। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के श्रवण से आपको प्रत्यक्ष संगति का लाभ मिल सकता है। प्रभुपाद ये लिखते हैं भगवत गीता में भगवान के शब्द हैं और श्रीमद् भागवत में भगवान के बारे में शब्द हैं। तो श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के जो शब्द हैं अगर आप श्रवण करते हैं तो भीष्म देव के सामने जैसे साक्षात भगवान थे वही आपको लाभ प्राप्त हो सकता है उन शब्दों को सुनने से, श्रवण का। ये भगवान के शब्द अवतार हैं। ये भगवत गीता भी भगवान का अवतार है और श्रीमद् भागवत भी भगवान का अवतार है। किस रूप में, शब्द के रूप में शब्द अवतार हैं। और कोई भी मनुष्य 8 वस्तुओं में से एक श्री भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्म देव की तरह मरता है वह सिद्धि प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। प्रकृति के नियम के अनुसार जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी चल रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर नहीं चिंता करता है, जैसे भी मरना होगा मर जाएंगे, जब मरेंगे तो देखा जाएगा, है ना, तो वो क्या है, पशु है। वो कुछ नहीं विचार करता है कि मुझे कैसे मरना है और मरने के बाद कहाँ जाना है, क्या होगा मेरा, विचार नहीं करता है, तो वो पशु है, मनुष्य नहीं है। तो वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है, यह मनुष्य जीवन भीष्म देव जैसी मृत्यु के लिए है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने भी जो है वैसे ही मर के दिखलाया, जैसे भीष्म देव मरे उसी प्रकार प्रभुपाद ने भी मर के दिखलाया। प्रभुपाद के लिए जरूरत नहीं थी कि वो शरीर छोड़ते, वो भी भगवान के धाम जा सकते थे अपने शरीर के साथ ही, लेकिन मर के दिखलाया। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस तरह से उनका अनुकरण कर सकें वैसे प्रभुपाद ने किया कि आप जो है इस प्रकार की व्यवस्था करो, कैसे मरना है। तो ये पुस्तक है जय श्रील प्रभुपाद, भक्ति विकास स्वामी के द्वारा लिखे। तो इन्होंने प्रभुपाद का गुणगान किया है, भक्ति विकास स्वामी ने, और कई प्रकार से गुणगान किया है। बड़ी अच्छी पुस्तक है ये। इसमें प्रभुपाद की तुलना जो है वो भगवान के कई अवतारों से करते हैं। कृष्ण के कई गुण प्रभुपाद में उन्होंने निकाले, और बहुत से अवतारों के गुण निकाले प्रभुपाद में, और भक्तों के भी जो ना गुण प्रभुपाद में वो निकालते हैं। तो भीष्म देव के भी गुण प्रभुपाद में उन्होंने निकाला। तो क्या लिखते हैं कि अपनी वृद्धावस्था में भीष्म देव उत्साहित थे और युद्ध करने में निपुण थे। आप भी ऐसे ही वृद्धावस्था, है ना, तो भीष्म देव से तुलना कर रहे हैं, और बड़ी ये मतलब क्या है, फिटिंग, मतलब उपयुक्त है, बड़ी उपयुक्त तुलना कर रहे हैं भीष्म देव के साथ। तो भीष्म वृद्धावस्था में भी उत्साहित थे लड़ाई में और निपुण भी थे, है ना। उसी प्रकार प्रभुपाद जी भी थे वृद्धावस्था में, लड़ाई है कि नहीं। ये आंदोलन जो है एक प्रकार का युद्ध ही है, कृष्ण भावना का आंदोलन। तो इसमें भी जैसे बड़े बड़े अस्त्र फेंके जाते हैं, है ना, अस्त्र चलाए जाते हैं, उसी प्रकार से ये प्रभुपाद की पुस्तकें भी ये अस्त्र हैं जो कि गिराए जा रहे हैं, है कि नहीं। तो और अपने मृत्यु के पहले उन्होंने पूरी तरह से धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या की, कहाँ, सर सैया में पड़े हुए, बाणों की सैया में पड़े हुए भी धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या की। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी वृद्धावस्था में गए लड़ाई के लिए, गए वृद्धावस्था में। अतिरथी अकेला युद्ध करता है असंख्य सैनिकों के साथ, तो प्रभुपाद भी अतिरथी अकेले गए, दूसरा कोई उनके साथ नहीं था। भीष्मदेव अकेले युद्ध करते थे असंख्य शत्रुओं की सेना में, तो भी प्रभुपाद भी अकेले गए, और वृद्ध भीष्म थे, प्रभुपाद भी वृद्ध थे। और मृत्यु सैया पर उन्होंने भी धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या की, और प्रभुपाद ने भी जो है अंत में अपने मृत्यु सैया पर धार्मिक शिक्षाएं प्रदान की। जैसे भगवान कृष्ण साक्षात उपस्थित थे जब भीष्मदेव मर रहे थे, उसी प्रकार से प्रभुपाद के दुर्भाव के समय भी कृष्ण थे। अब प्रश्न उठता है कि प्रभुपाद के दुर्भाग्य समय कहाँ कृष्ण थे,
राम के रूप में।
तो कृष्ण को सब कोई देख रहे थे जब भीष्म जी मर रहे थे, तो सब लोग देख रहे, और भीष्म जी भी देख रहे थे, और सब लोग देख रहे थे कृष्ण को। लेकिन जब प्रभुपाद जी मर रहे थे तो कौन देख रहा था कृष्ण को? यहां लिखे हैं कि भीष्म के सामने कृष्ण प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, क्योंकि उनको वही प्रिय रूप था। भीष्म जी को भगवान का चतुर्भुज रूप प्यारा था, तो कृष्ण उस रूप में प्रकट हुए। और प्रभुपाद जी के तिरुभाव के समय वो प्रकट हुए हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, जो कि प्रभुपाद को बहुत प्रिय था। आप समझे? हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान का रूप है, कले काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो प्रभुपाद को ये रूप प्रिय था कृष्ण का, इसलिए कृष्ण अपने इस रूप में थे। कैसे? सब भक्त लोग उनको घेरे हुए कीर्तन कर रहे थे, है कि नहीं? तो भीष्म जी से कितनी सटीक तुलना की है प्रभुपाद की, और कई मामलों में बिल्कुल बिल्कुल सही तुलना है, है ना? जय श्रील प्रभुपाद। तो ये जो है मैंने पढ़ा। हाँ, अब भीष्म जी ने जो है अपने मन को लगाया भगवान में और परमात्मा में, कृष्ण एवं भगवती। चूंकि कृष्ण को भगवान कहा गया है, एक मेरा लेख है, ये श्री भगवान ने कहा भाग 42वां जो भगवत दर्शन में छपता है, इसमें भगवान की व्याख्या हमने की है। तो आप जानते हैं कि 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, 6 प्रकार के भग हैं। कौन कौन से हैं? संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण त्याग। तो संपूर्ण धन इसकी व्याख्या है, श्री कृष्ण संपूर्ण धन के स्वामी हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण जिस गोलोक धाम के निवासी हैं, वहां पर जितने भी भवन हैं वे पत्थर या ईंटों से निर्मित नहीं है। क्या है? बल्कि वे भवन चिंतामणि से निर्मित हैं। चिंतामणि ऐसा कीमती रत्न है जिससे व्यक्ति की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रील प्रभुपाद इस चिंतामणि का अर्थ पारसमणि बताते हैं, जो अपने स्पर्श से लोहे को सोना बना देती है। देखो कृष्ण कितने धनी हैं, उनके धाम में जितने घर हैं सब चिंतामणि या पारसमणि से बने हैं। श्री कृष्ण के धाम में जितने भी वृक्ष हैं, क्या हैं? सभी कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष की विशेषता यह है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी छाया में बैठ जाए तो वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु से तुरंत प्राप्त हो जाती है। इस बात से यह भी स्पष्ट है कि कल्प वृक्ष से सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के धाम में ऐसे असंख्य कल्प वृक्ष हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्री कृष्ण कितने धनी हैं। श्री कृष्ण अपने धाम में सुरभि नामक गायों का पालन करते हैं। सुरभि गायों की वह जाति है जो हर समय इच्छानुसार मात्रा में दूध दे सकती है। सुरभि का अर्थ यदि कामधेनु माना जाए तो इसका अर्थ है कि सुरभि केवल असीमित मात्रा में दूध ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के वस्त्र, आसन, शैया और भोजन आदि सब कुछ प्रदान कर सकती है। क्योंकि श्री कृष्ण के धाम में ऐसी असंख्य गायें हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्री कृष्ण कितने धनी हैं। श्री कृष्ण के धाम में अनेक लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। इस भौतिक जगत में एक लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए संपूर्ण देवता और मनुष्यगण प्रार्थना करते रहते हैं, परंतु फिर भी वे लक्ष्मी की कृपा या तो प्राप्त नहीं कर पाते या फिर कुछ समय के लिए प्राप्त कर पाते हैं। परंतु ऐसी असंख्य लक्ष्मियां श्री कृष्ण की स्थिरता पूर्वक सेवा करती रहती हैं तथा उन्हें भय बना रहता है। लक्ष्मियों को भय बना रहता है क्या? कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें अपनी सेवा से दूर ना कर दें। इस प्रकार हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्री कृष्ण कितने धनी हैं। जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उनकी 16108 पत्नियों में से प्रत्येक के पास एक एक महल था। उन महलों में प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार थी? ये सब बल्ब नहीं थे, ट्यूबलाइट नहीं थे, फिर कैसे रोशनी होती थी? वहां पर आजकल की ट्यूबलाइट या बल्ब नहीं थे तो फिर क्या था? वहां पर रत्नों के दीपक थे, अर्थात ऐसे कीमती रत्न थे जो ट्यूबलाइट या बल्ब की तरह प्रकाश उत्पन्न करते थे। ऐसे रत्न थे, ट्यूबलाइट बल्ब की तरह प्रकाश पैदा कर देते हैं, ऐसे रत्न थे। इस प्रकार के एक रत्न के भी मूल्य की हम कल्पना नहीं कर सकते, तो फिर हम किस प्रकार कल्पना कर सकते हैं कि श्री कृष्ण कितने धनी हैं? श्री कृष्ण वास्तव में धनी हैं, इसीलिए वे अपने जन्म के समय पर अपने सुसज्जित वेशभूषा में आए। धनी व्यक्ति जन्म लेता है तो भी अपने आभूषण और वस्त्र सबके साथ जब हुए ना, तो मुकुट है, करधनी है, बाजूबंद, और कौस्तुभ मणि सब धारण करके आए, धनी है ना, और कोई धनी नहीं है, तो ये सब नंगे आते हैं, तो एक कपड़ा नहीं होता है इसके शरीर में, सब नंगे आते हैं। नहीं, कृष्ण धनी है, कोई भी धनी व्यक्ति अपने साथ कुछ भी धन नहीं लाता और ना ही ले जाता है, ना ले जाता, इसलिए वास्तव में कोई भी धनी नहीं है, परंतु श्री कृष्ण वास्तव में धनी है, इसलिए वे जब इस भौतिक जगत में आते हैं या इस भौतिक जगत से जाते हैं सदा अपने वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, अतः श्री कृष्ण के पास संपूर्ण धन है। जब जाते हैं तो भी अपने सब जो साज सज्जा है उसके साथ जाते हैं कृष्ण, फिर संपूर्ण बल, श्री कृष्ण में असीम बल है। श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। इस पर्वत को धारण करने में उन्हें ना तो कोई प्रयास ही करना पड़ा, चलेंगे वो कृष्ण के धारण किए हैं, मतलब अभी कृष्ण धारण किए हुए हैं, है ना। 7 दिन गोवर्धन पूजा के बाद जो 7 दिन है वो कृष्ण के वो समय है, वो दिन है जब कृष्ण ने धारण किया। और इस पर्वत को धारण करने में उन्हें ना तो कोई प्रयास ही करना पड़ा और ना ही उन्हें थकान आई। श्री कृष्ण के आंगन में जो 2 जुड़वा वृक्ष थे वे 36,000 वर्ष पुराने तथा हरे भरे थे। हरे भरे पुराने वृक्षों तो बहुत मजबूत होते हैं, सूखे नहीं थे, हरे भरे, और पुराने कितने थे, 36,000 साल। आप सोचो कितने मजबूत थे। श्री कृष्ण ने रस्सी से बंधे होने के कारण आगे बढ़ने के लिए हल्का प्रयास किया, जैसे बच्चा होता ना हल्का प्रयास करता है, कोई ज्यादा प्रयास थोड़ी करता है, हल्का प्रयास किया तथा वे दोनों वृक्ष इतनी तेजी से गिरे कि संपूर्ण वृक्ष की भूमि में कंपन होने लगा। श्री कृष्ण ही वास्तव में बलवान हैं, क्योंकि वे जब इस भौतिक जगत में आते हैं उस समय उनके अंदर संपूर्ण बल होता है। इसका प्रमाण पूतना का वध है। अपने 6 दिन की अवस्था में श्री कृष्ण ने पूतना के विष भरे स्तन को इतनी तीव्रता से चूसा कि 18 किलोमीटर तक फैले हुए उसके विशाल शरीर की प्राणवायु श्री कृष्ण के शरीर में चली गई। 18 किलोमीटर लंबी पूतना थी और कृष्ण ने स्तन चूस करके उसके प्राणों को पी लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म के समय पर भी श्री कृष्ण में अनंत बल था, जबकि कोई व्यक्ति कितना ही बलवान हो परंतु जन्म के समय पर उसमें इतना भी बल नहीं होता कि वो हिल सके, हिल भी नहीं पाता है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण इस भौतिक जगत को त्याग कर जाते हैं उस समय भी उनमें असीम बल होता है। इसका प्रमाण गर्ग संहिता में है। श्री कृष्ण ने अपना शरीर नहीं त्यागा, बल्कि गोलोक धाम से आए हुए विमान में उन्होंने समस्त ब्रजवासियों को बैठाया तथा गोलोक धाम चले गए। ये बलवान है। अपनी असीम शक्ति से श्री कृष्ण 84 क्रोश की ब्रज भूमि को भी अपने साथ ले गए, वो भूमि भी चली गई कृष्ण के साथ। तो कृष्ण है, उनके पास बल है, इसलिए अपनी भूमि को भी ले गए 84 कोस की। इस भौतिक जगत में काल ही सबसे अधिक बलवान है जो सभी को मार डालता है, परंतु श्री कृष्ण इतने अधिक बलवान है कि उन्हें काल का भी काल कहा जाता है। सबसे ज्यादा बलवान इस संसार में कौन है, काल है। लेकिन कृष्ण कितने बलवान है कि काल के भी काल है। तीसरा है संपूर्ण यश। श्री कृष्ण का यश असीम है, समस्त वेद उनका ही यशोगान करते हैं। वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यः। यद्यपि समस्त वेद श्री कृष्ण की ही स्तुति करते हैं परंतु बड़े बड़े विद्वान इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए समस्त पुराणों में श्री कृष्ण का यश प्रकट रूप से वर्णित हुआ है। श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है क्योंकि वे अनेक प्रकार के उत्तम श्लोकों के द्वारा उनके यश का वर्णन सदा किया गया है, किया जा रहा है तथा किया जाएगा। श्री कृष्ण के यश का कोई अंत नहीं है। शेष जी अपने 1000 मुखों से श्री कृष्ण के यश का वर्णन कर रहे हैं परंतु उन्हें अभी तक श्री कृष्ण के यश का अंत नहीं मिला। कितना यश कृष्ण का। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में श्री कृष्ण के यश का वर्णन हुआ है, परंतु स्वर्ग लोक में श्री कृष्ण के यश का वर्णन करने वाले श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? जो स्वर्ग में भागवत है उसमें कितने श्लोक हैं?
एक करोड़
100 करोड़। स्वर्ग में जो भागवत है उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने श्री कृष्ण का यश 4 लाख से भी अधिक श्लोकों में लिखा है। जीव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के यश का वर्णन करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने नवदीप में नादिया प्रकाश नामक एक दैनिक समाचार पत्र निकाला था। दैनिक समाचार पत्र, जब लोगों ने उनसे पूछा कि प्रतिदिन समाचार पत्र में छापने के लिए उन्हें इतनी सामग्री कहां से मिलेगी, लोगों ने पूछा कि दैनिक समाचार पत्र निकाल रहे हो तो इतनी सामग्री कहां से मिलेगी रोज रोज इतना बड़ा समाचार पत्र में छापने के लिए। हरिबोल। इतनी सामग्री कहां से मिलेगी? तो उनका उत्तर था कि श्री कृष्ण का यश इतना अधिक विस्तृत है कि यदि प्रति सेकंड समाचार पत्र छापा जाए तो भी पर्याप्त नहीं होगा। 1 सेकंड में समाचार पत्र छापा जाए। श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण के यश का वर्णन 80 से अधिक पुस्तकों में किया है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि वास्तव में कौन व्यक्ति यश प्राप्त करता है, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त बनता है वही यश प्राप्त करता है, अन्यथा कितने लोग हैं जो यश प्राप्त करते हैं परंतु कुछ ही समय बाद उनका यश मिट जाता है। परीक्षित महाराज ने श्री कृष्ण के यश का 7 दिनों तक श्रवण किया, इसलिए वे यशस्वी हो गए। तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिनों तक श्री कृष्ण के यश का वर्णन किया, इसलिए वे यशस्वी हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का यश अनंत है। 4th है संपूर्ण सौंदर्य। अभी क्लास में सोना बहुत अपराध है, क्लास में सोना बहुत अपराध है, आंखें बंद करना अपराध है। आपसे प्रार्थना है, आंखें बंद करना सोना ये बहुत खराब आदत है आप लोगों की, उससे अच्छा है आप चले जाओ या खड़े हो जाओ, क्योंकि जो वक्ता है उसको जो है ना फिर उत्साह नहीं मिलता देखने में। आपकी उत्साह अगर है सुनने में है, तब तो मैं सुनाऊंगा। आपका सुनने में उत्साह नहीं है तो फिर क्या फायदा? आप सुनने का प्रयास करो, वो ज्यादा अच्छा है। जो सुनाने वाला वो देख रहा है कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, उनको रुचि हो रही कि नहीं हो रही, वो सुनाने वाला ही देख रहा है। इसलिए आपको उत्साह दिखाना चाहिए अपने चेहरे में। ये नहीं बैठे हैं सत्यनारायण की कथा हो रही है, पंडित जी हैं वो सुना करके चले गए, अपना आटा और जो है ना पैसा बांधा वो चले गए, है ना, ये वो कथा नहीं है। आपको कुछ आनंद देने के लिए मैं सुना रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है कि मुझे तनख्वाह मिल रही है तो मैं कथा सुना करके चला जाऊंगा, ये ऐसा नहीं है। 4th है संपूर्ण सौंदर्य। श्री कृष्ण का सौंदर्य असीम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, अर्थात श्री कृष्ण के सौंदर्य की विशेषता 1 करोड़ कामदेवों के समान कमनीय है। कमनीय का अर्थ है वह वस्तु जिसको देखने की सदा इच्छा होती है। देवताओं में कामदेव ऐसा देवता है जिसका सौंदर्य देखने के लिए सभी लोग आकर्षित होते हैं। जब यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य 1 करोड़ कामदेवों के समान कमनीय है, तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के मन में कामदेव का सौंदर्य देखने की जितनी कामना उत्पन्न होती है उससे भी 1 करोड़ गुनी कामना श्री कृष्ण का सौंदर्य देखने की होती है। कमनीय का मतलब यह है जिसके लिए कामना करनी चाहिए। जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं वे अत्यंत अभागे हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सौंदर्य को भौतिक प्रकृति से निर्मित मानकर उनके दर्शन का आनंद नहीं लेना चाहते हैं। परंतु ब्रज की गोपियां जब श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उस समय उनकी पलकों के बंद होने से श्री कृष्ण के दर्शन में बाधा पड़ती है। सामान्य रूप से यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो पलकों के बंद होने से हमें कोई बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि एक निमेष काल एक सेकंड का 72वां हिस्सा होता है। निमेष काल मतलब आंखें बंद हुई और आंखें खुली, कितना होता समय? 1 सेकंड का 72वां हिस्सा है, इतना थोड़ा है। परंतु गोपियों को श्री कृष्ण दर्शन में पलकों के बंद होने से इतनी बाधा पड़ती है कि वह निमेष काल उन्हें एक युग के बराबर लगता। इस कारण से वे यहां तक कि ब्रह्मा जी की भी निंदा करते हैं कि ब्रह्मा जी कितने मूर्ख हैं कि जब उन्होंने हमें कृष्ण का दर्शन कराया है तो हमारे नेत्रों में पलकें क्यों बनाएंगे। इस भौतिक जगत में वास्तव में कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रारंभ में उत्पन्न होती है और अंत में नष्ट हो जाती है। यदि बीच में किसी वस्तु या व्यक्ति में सौंदर्य आता है तो भी श्री कृष्ण के सौंदर्य की छाया है। गीता के 10वें अध्याय के 44वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जो वस्तुएं या व्यक्ति सौंदर्य या शक्ति से युक्त हैं उनके सौंदर्य या शक्ति को मेरे सौंदर्य या शक्ति से उत्पन्न हुआ समझो। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ही वास्तव में सुंदर हैं, क्योंकि उनका सौंदर्य ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना ही कभी नष्ट होता है। उनका सौंदर्य नित्य नवीन रहता है, नित्य नवीन। पांचवा है संपूर्ण ज्ञान। श्री कृष्ण का ज्ञान असीम है। उन्होंने गीता के रूप में जो बातें अर्जुन को बताई इसके लिए उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। ये गीता जो ज्ञान का शास्त्र है, परंतु गीता के इन शब्दों पर हजारों वर्षों से विद्वान चिंतन तथा मनन करते रहे हैं तथा करते रहेंगे। फिर भी इन शब्दों से नए नए दिव्य भाव प्रकट होते रहते हैं। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण का ज्ञान कितना अगाध है। गीता 4:5 में, यानी 4वें अध्याय के 5वें श्लोक में वे कहते हैं, वे जो कुछ कहते हैं उससे निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात को जानते हैं। हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में असंख्य जीव हैं, फिर प्रत्येक जीव की असंख्य जन्म हो चुके हैं, प्रत्येक जन्म की असंख्य बातें हैं। कोई भी जीव इस जन्म की भी सभी बातों को नहीं जान सकता, यहां तक कि हम बीते हुए एक दिन की भी अनेक बातें भूल जाते हैं। कल की बहुत बातें भूल गए, आज की भी बहुत सी बातें भूल गए आप। परंतु श्री कृष्ण अपने सभी जन्मों की तथा सभी जीवों के सभी जन्मों की सभी बातों को जानते हैं। इस प्रकार हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्री कृष्ण के पास कितना ज्ञान है। इस भौतिक जगत में वास्तव में किसी के पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये जगत अज्ञान का सागर है, अज्ञान का सागर। यदि किसी के पास कुछ ज्ञान है तो वह श्री कृष्ण से ही आया है, क्योंकि श्री कृष्ण गीता 15:15 में कहते हैं, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, कि वे सभी जीवों के हृदय में स्थित होकर स्मरण शक्ति तथा ज्ञान प्रदान करते हैं। दिव्य ज्ञान की परंपरा भी श्री कृष्ण से ही प्रारंभ होती है, जिसकी सहायता से जीव श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक जीव को बाहर से तथा अंतर से ज्ञान देने वाले हैं। 6वां संपूर्ण वैराग्य। श्री कृष्ण का वैराग्य असीम है। जरासंध की 23 अक्षौणी सेना का श्री कृष्ण ने 70 बार विनाश किया, परंतु 18वीं बार श्री कृष्ण उसके सामने युद्ध छोड़कर भागे। यह श्री कृष्ण का महान त्याग है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं जबकि वे असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। इस प्रकार हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्री कृष्ण में कितना त्याग है। अर्जुन का रथ चला रहे हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, परंतु फिर भी वे ब्रज में माखन चोरी की लीला करते हैं, ये उनका त्याग है। कोई चोरी का काम नहीं कर सकता, अगर है इतना धनी व्यक्ति कभी चोरी का काम नहीं करेगा, तो इन चोरी का काम करना ये भी कृष्ण का त्याग है। माखन चुरा रहे हैं, ये उनका त्याग है। श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए उनकी असंख्य शक्तियां हैं, परंतु फिर भी वे अपने भक्तों पर छोटी छोटी बातों के लिए भी आश्रित रहते हैं, ये उनका त्याग है। छोटी छोटी बातों के लिए आश्रित रहते हैं। भक्तगण उन्हें जैसा भी भोजन खिलाते हैं वो खाते हैं, ये कृष्ण का त्याग है। वे उन्हें जैसे भी वस्त्र पहनाते हैं वे पहनते हैं, ये कृष्ण का त्याग है। वे उन्हें जिन नामों से पुकारते हैं उन नामों को वे स्वीकार कर लेते हैं, ये कृष्ण का त्याग है। इस भौतिक जगत में वास्तव में किसी भी जीव में त्याग नहीं है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु का त्याग करता है तो वास्तव में वह त्याग नहीं है, क्योंकि उसने जिस वस्तु का त्याग किया है वह वस्तु उसकी पहले से ही नहीं थी। क्या त्याग आपने, आपका पहले से था ही क्या जो आपने छोड़ा त्यागा है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने कल्याण के लिए अपने भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करता है तो वह श्री कृष्ण की कृपा। भीष्म जी ने उत्तरायण में शरीर छोड़ा वो भक्तों को दिखाने के, नहीं, जो भीष्म जी ने उत्तरायण में शरीर छोड़ा और अपने प्राणों को ऊपर चढ़ाया वो विधि गीता में भगवान ने बतलाई है शुक्ल गति के रूप में, और वह संक्षेप में बतलाई क्योंकि वो सबके लिए संभव नहीं है। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही उसका पालन कर सकता है उस विधि का, और वो संभव नहीं है। आजीवन ब्रह्मचर्य का जो पालन करे, यदि छंदो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रोक्षे, तो गीता में भगवान कहते हैं कि जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर, उसको मैं संक्षेप से बताऊंगा। संक्षेप से क्यों बताऊंगा? क्योंकि ये सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन चूंकि भगवद गीता योग शास्त्र है, सब प्रकार के योगों का वर्णन है, इसलिए भगवान उसको बताते हैं कि कोई ये ना कहे कि गीता में ये चीज नहीं है। गीता में हर चीज है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है, है ना। अर्जुन भी नहीं कर सकते इस विधि का पालन, भीष्म जी कर सकते हैं क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, है ना। तो उत्तरायण में शरीर छोड़ना और फिर गीता में जैसे बताया सर्व द्वाराणि सम्य मनोहृदय निर्दिशा मूर्ध्य अध्यात्मनः प्राणम आस्तु योग धारणम, कि यहाँ पर प्राण को ला करके और फिर जो है ना वो शरीर छोड़ते हैं, तो वो विधि जो है ना सबके लिए नहीं है, इसलिए गीता में भगवान संक्षेप से बताते हैं। और भीष्म जी ने उस समय के योगियों के लिए वो विधि सिखाने के लिए किया, ठीक है। उस समय कुछ ऐसे जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे जिनको के सिखाने के लिए भीष्म जी ने किया, लेकिन वैसा ब्रह्मचारी अब संभव नहीं है, कलयुग में बिल्कुल संभव नहीं है, तो इसलिए वो प्रभुपाद जी नहीं बता रहे। लेकिन एक दूसरी विधि है क्या, श्रवण, श्रवण कीर्तन की, है ना। तो यहां चूंकि श्लोक में बताया है कि मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, मन के द्वारा स्मरण करना, वाणी के द्वारा कीर्तन करना और दृष्टि के द्वारा दर्शन करना, है? तो स्मरण कीर्तन और दर्शन, ये तीन चीजों के द्वारा भीष्म जी ने कृष्ण को प्राप्त किया। तो ये जो पक्ष है भीष्म जी के प्राण त्याग का, इसको प्रभुपाद जी प्रकाशित कर रहे हैं, इस पर जो है प्रभुपाद जी ज्यादा जोर दे रहे हैं कि ये हम लोग पालन कर सकते हैं, और प्रभुपाद ने स्वयं भी ये करके दिखलाया और हम लोगों को जो है मतलब दिखाने के लिए ऐसे किया। तो प्रभुपाद ने शरीर नहीं छोड़ा उत्तरायण में, प्रभुपाद ने उत्तरायण में शरीर नहीं छोड़ा, प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा 8 तारीख आएगी दिसंबर नवंबर की 8 नवंबर को, तो वो जो है उत्तरायण ही था, उत्तरायण तो शुरू होगा 14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होगा मकर संक्रांति से, तो इसका कोई विचार नहीं है। गीता में भगवान के अनन्य चेता शततम यो माम स्मरति नित्य सह, तस्याहम सुलभा पार नित्य युक्तस्य योगिनः, तो नित्य जो युक्त है योगी उसके लिए मैं सुलभ। तो प्रभुपाद ने जो है वो विधि बतलाई जो संभव है, सबके लिए संभव है, और कोई ये ना सोचे कि नहीं नहीं वो तो भीष्म जी थे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे तो हम तो नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भीष्म जी ने उनको सिखाने के लिए, उस समय के जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे उनको सिखाने के लिए उस विधि का पालन किया, और जो है हम लोगों को भी सिखाने के लिए उन्होंने वो भी विधि का पालन किया, है ना। तो प्रभुपाद जी ने उसमें से वो ग्रहण किया जो सब लोग ग्रहण कर सकते हैं, और प्रभुपाद ने वो सिखलाया हमको। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ प्रभु,
भगवान में लीन हो गए।
हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है, इसमें लिखा है आत्मनि आत्मानम आवेश्य, उसको आप जो कुछ भी समझो, आत्मनि आत्मानम आवेश्य, आवेश्य का मतलब होता है आवेशित करके, आवेशित करके। आत्मनि माने परमात्मा में, भगवती आत्मनि यानी कृष्ण है, भगवती आत्मनि जो कृष्ण है, जो भगवान है, परमात्मा है, उनमें उन्होंने जो है आत्मानम आवेश, अपनी आत्मा को आवेशित किया, अपनी आत्मा को आवेशित किया। जैसे कि बिजली का तार होता है ना, तांबे का तार होता है, तो जब उसमें बिजली प्रवाहित होती है तो वो क्या बन जाता है, अब तांबे का तार नहीं रहा, क्या रहा ये, बिजली बन गया, विद्युत बन गया, आप समझे ना, तारे का तार नहीं ना, विद्युत बन गया। तो आवेश मतलब आवेशित करके, अपनी आत्मा को आवेशित करके भगवान में, तो भगवान से संपर्क जब जुड़ जाता है तो फिर ये जो आत्मा है ये भौतिक प्रदूषण से मुक्त हो जाती है ना, वो फिर करंट बन गई, मतलब भगवान के समान उसमें गुण आ गए। ये दूसरा उदाहरण दिया जाता है जो बड़ा व्यवहारिक है, जो सबको समझ सकता है, वो चिंगारी का है कि चिंगारी जब अग्नि से दूर होती है तो क्या होती है, काली, उसमें कोई गुण नहीं अग्नि का, लेकिन जैसे अग्नि के निकट आती है तो उसमें अग्नि के गुण आ जाते हैं, चमकीली है ना, अब उसमें वो गुण नहीं रहा जो पहले था, कालापन नहीं रहा है ना, अग्नि के गुण आ गए। तो उसी प्रकार से जो है ना भीष्म जी ने जो है ना अपने मन और वाणी और दृष्टि के द्वारा भगवान से संपर्क स्थापित करके अपने को आवेशित कर लिया। तो आजकल हम लोग समझ सकते हैं आवेशित का मतलब क्या है, बिजली, तांबे का तार है, अगर उसमें बिजली प्रवाहित होती है तो वह तांबे का तार नहीं रहा, वो अब तांबे की तरह काम नहीं करता, वो बिजली की तरह काम करता है ना। तो भीष्म जी ने जो है भगवान के साथ में इस प्रकार अपना संबंध जोड़ करके अपने को पूर्ण आध्यात्मिक कर लिया, आवेश, उसको आप जो कुछ भी समझो, लेकिन चिंगारी अग्नि में भी होती है तो अग्नि से अलग रहती है। तो जो मायावादी कहते हैं भाई लीन हो गए, तो इस तरह से लीन होना नहीं है, जो वैष्णव है वो समझते हैं सूक्ष्म विज्ञान को कि चिंगारी अग्नि के अंदर भी रहती है तो भी अग्नि से अलग है, और अग्नि से दूर होती है तो वो उसमें चिंगारी का गुण नहीं रहता है, अग्नि का गुण नहीं रहता है। तो जो दिव्य गुण है वो सब नष्ट हो जाते हैं आत्मा के, जैसे कृष्ण से विमुख होती है, और कृष्ण के जो गुण है वो आत्मा में आ जाते हैं जैसे कृष्ण के सम्मुख हो, कृष्ण के संपर्क में आए। तो शब्द है आवेश, तम तथा कृपया आविष्टम, जैसे अर्जुन को भी कहा गया है कृपया आविष्टम, अर्जुन भी कृपा से आविष्ट है, करुणा से आविष्ट है। तो करुणा जैसे बिजली की तरह है और पूरा अर्जुन का जो शरीर है वो करुणा से आवेशित हो गया, करुणा, जीवों पर करुणा है ना, तो फिर वो करुणा मूर्ति हो गई, जैसे प्रभुपाद को कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, तो कृपा से आवेशित हो गए प्रभुपाद जी, तो उनका पूरा शरीर क्या हो गया, कृपा मूर्ति हो गया है ना। जैसे किसी भी चीज में अगर करा जाए, इसमें करंट आ जाए तो आप छुओगे तो एक करंट लगेगा, करंट देगा आपको, है कि नहीं, अब ये करंट बन गया, ये जो है ना आप करताल नहीं रहा, करंट बन गया ये, है ना। उसी प्रकार से भक्त के शरीर में जो है अगर कृपा का आवेश होता है तो वो कृपा मूर्ति कहलाता है, फिर वो जो है उसका भौतिक शरीर नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी को कहते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, तो कृष्ण कृपा की मूर्ति है, तो प्रभुपाद का शरीर भौतिक नहीं है, अब वो कृपा मूर्ति, कृपा मूर्ति, तो वो आवेश कहलाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का, आपका इसमें बड़ी अच्छी घटना है, मैं वैसे सुनाना चाहता था लेकिन चूंकि मैं नहीं है, लेकिन आपसे थोड़ा समय में मांग रहा हूँ, बहुत सुंदर घटना है, मैं इसको सुना रहा हूँ। ये महाभारत में जब भीष्म जी ने शरीर छोड़ा तो क्या हुआ, ये बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कुछ श्लोक पढ़ के सुना रहा हूँ, पहले भी मैंने सुनाए थे। वैशंपायन जी कहते हैं, ये सब कथा जो है वैशंपायन जी सुना रहे हैं जन्मेजय को, समस्त कौरवों से ऐसा कहकर कुरुश्रेष्ठ शांतनु नंदन भीष्म जी दो घड़ी तक चुपचाप पड़े रहे। अभी उनको शरीर छोड़ना है तो दो घड़ी तक उन्होंने मौन धारण किया, दो घड़ी मतलब 48 मिनट, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, घटिका बोलते हैं या और क्या बोलते हैं, दंड बोलते हैं, दंड या घटी, घटिका, घड़ी 24 मिनट की होती है, और दो घड़ी यानी एक मुहूर्त 48 मिनट का, 48 मिनट तक वो मौन धारण किए रहे। एवं मुक्त करुण सर्वान भीष्मा शांत नमस्तदा तूष्णीम अभूव कौरव्या समहूर्तम अरिंदम। इसके बाद वे मन सहित प्राण वायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। इस तरह योगिक क्रिया द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्म जी के प्राण क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे। अब वो अपने प्राणों के ऊपर चढ़ा रहे हैं। कहां से? पैरों के तलवे से उन्होंने प्राणों के ऊपर चढ़ाना शुरू किया। जो प्राणवायु है पूरे शरीर में व्याप्त है, तो अपने प्राणों को वो पैरों से ऊपर मतलब सिर तक लाना है उनको प्राण, तो वो उठाने लगे। धारया माथ चा आत्मानम धारणा सु यथाक्रमम तस्वर्धम अगमन प्राणा सन्निरुद्धा महात्मन। अब प्रभो उस समय वहां एकत्र हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य की घटना घटी। अब सुनो क्या आश्चर्य हुआ। व्यास आदि सब महर्षियों ने देखा ये आश्चर्य, व्यास जैसे ऋषियों के लिए भी था कि योग युक्त हुए शांतनु नंदन भीष्म के प्राण उनके जिस जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठते थे उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते थे, उनका घाव भर जाता था। अब बाण निकलना आसान नहीं है, बाण घुस जाए तो आसान है, बाण घुसता आसानी से नुकीला होता है और घुसा हुआ बाण निकल नहीं सकता, क्योंकि दोनों तरफ से पीछे पंखे होते हैं बाण के, अगर आप आगे से निकालते हो तो पीछे पंखे फंस जाएंगे, अगर पीछे से निकालते हो तो जो उसकी नोक होती है वहां गांठ होती है बाण की तो फंसती है, तो बाण ना आगे से निकलता ना पीछे से निकलता है। जब बाण धस जाए है ना, आर पार थे भीष्म के शरीर में बाण, लेकिन बाण बिना प्रयास के निकल रहे हैं और घाव भर रहा है। जहां जहां से प्राण अपना ऊपर उठा रहे हैं तो भीष्म जी का जो है जो शरीर है बाणों से भी मुक्त हो रहा है और घाव भी भर रहे हैं अपने आप। ये व्यास जैसे ऋषियों के लिए भी आश्चर्य की बात थी। इस प्रकार सबके देखते देखते भीष्म जी का शरीर क्षण भर में बाणों से रहित हो गया। एक क्षण होता है 4 मिनट का, एक क्षण होता है 4 मिनट का, तो 4 मिनट में जो है भीष्म जी ने अपने प्राणों को पैरों से उठाया और सिर तक लाए, और तब तक जो है ना उनके पैरों के बाण हाथों के सब एक एक करके निकलते गए और घाव भी भरता गया। ये कितना आश्चर्य है। ये देखकर व्यास आदि समस्त मुनियों सहित भगवान श्री कृष्ण को भी बड़ा विस्मय हुआ। भगवान कृष्ण भी विस्मय करते हैं, भगवान की ही कृपा है लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं, भक्त का महात्म दिखला रहे हैं। तन्दृष्ट्वा विस्मिता सर्वे वासुदेव पुरोगमान सह तैर मुनि भी सर्वे सदा व्यासादिभिर नृप। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राणों को सब ओर से रोक लिया था, इसलिए वह उनका मस्तक फोड़ कर आकाश में चला गया। तो यहां से फिर जो ना उन्होंने थोड़ा प्राणों को निकाला। सन्निरुद्ध स्तुतेनात्मा सर्वेश्वाय तने सुचाम जगाम भित्वा मूर्धानम देवम अभ्यु अभ्युत पपाते हम। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और साथ ही दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सिद्धों और ब्रह्मर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ और भीष्म जी को साधु वाद देने लगे, साधु साधु कहने लगे। ब्रह्मर्षि लोग जो है साधु साधु कहते हैं भीष्म जी को देख करके। देव दुंदुभिना दश्चा पुष्प वर्षय सहा भवन सिद्धा ब्रह्मर्षि साधु साधुति हर्षिता। तो इस प्रकार से वर्णन है भीष्म जी के शरीर के त्याग का। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो ये जो है मतलब भीष्म जी की महिमा है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। और अपने भाइयों को भी युधिष्ठिर क्या बताते हैं हमेशा, क्योंकि कभी तनाव की स्थिति ना पैदा हो जाए, तो पहले की बातें अगर याद आए तो फिर तनाव बढ़ सकता है, धृतराष्ट्र और पांडवों के बीच में तनाव बढ़ सकता है ना। तो युधिष्ठिर हमेशा अपने भाइयों को समझाते रहते थे, मतलब वैसे गलत रहा क्योंकि पांडवों को मार डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगाने के षड्यंत्र सब धृतराष्ट्र भी उसमें शामिल था, और सबसे ज्यादा दोषी धृतराष्ट्र था क्योंकि वो राजा भी था, दुर्योधन तो युवराज था, धृतराष्ट्र के आदेश से ही सब मतलब कार्य हो रहा था, धृतराष्ट्र की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं दुर्योधन ने किया है ना, जो सबसे ज्यादा दोष धृतराष्ट्र का था। लेकिन मंत्रियों में तनाव ना पैदा हो, युधिष्ठिर क्या कहते हैं
कि ये मेरे और आप लोगों के माननीय है, जो इनकी आज्ञा के अधीन रहता है वही मेरा सुहृद है। दूसरे कहते हैं विपरीत आचरण करने वाला मेरा शत्रु है, वह मेरे दंड का भागी होगा। अगर कोई धृतराष्ट्र के विरुद्ध आचरण करे तो मैं उसको दंड दूंगा। कितना उन्होंने जो है मतलब नियंत्रण किया है, सबके मनोभावना पर बहुत नियंत्रण किया। मतलब दंड का भी भय देकर के सबके मनोभावना को उन्होंने बहुत नियंत्रण किया है। आनिशंस परो राजा प्रिय मानो युधिष्ठिर वाचे सदा भ्रातन अमात्यां च महीपति मयाच भवद्भिश्च मान एष नराधिपहां निदेशे तत्रस्थति समे सुरन् विपरीतश्च मे शत्रुर्नियम्यश्च भविन्नरः। पिता आदि की तिथियों पर जो तिथि होती ना, क्या बोलते उसको, पुण्यतिथि, छया है तिथियों पर, और पुत्रों और समस्त सुहृदों के श्राद्ध में राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहें वो सब इनको दो, राजा धृतराष्ट्र को दो, जो भी वो करते हैं धन खर्चा करते हैं दो। पितृवृत्ते सोचाहासु पुत्राणाम श्राद्ध कर्मणी सुहृदाम चैव सर्वे संयावदस्यचिकीर्षितम्। दूसरे का ये कहना है कि मेरे पास बताओ पूछने के लिए कि धृतराष्ट्र इतना धन मांग रहे हैं, बाकी तो सब कार्यों में नियंत्रण है लेकिन धृतराष्ट्र के कार्यों में युधिष्ठिर का कोई नियंत्रण नहीं है। कहते हैं मुझसे पूछो नहीं, मुझसे बिना पूछे धृतराष्ट्र जितना भी मांगे हैं उनको धन दो, जितना दान करना चाहें, जितना धन खर्चा करना चाहें, यज्ञ करना चाहें, बिना पूछे इनको देते रहो धृतराष्ट्र को। तदनंतर महामना गुरुकुल नंदन राजा धृतराष्ट्र उक्त अवसरों पर सुयोग्य ब्राह्मणों को बारंबार प्रचुर धन का दान कर देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव भी उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कार्यों में उनका साथ देते थे। तथा स राजा कौरव्यो धृतराष्ट्र महामना ब्राह्मणे भ्यो यथारहे भ्यो ददो वृत्तान्यनेकशः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।